हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 26। कृपया इस असीम आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण बिंबफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यम प्रव्रजन्तमनुके तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीक्षताम् तमोर्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपया निगुरुं मुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार ಶಿವಾಸುದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೀ ಜಯ ಹೋ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂಧ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 26. ಕೃಪಯಾ ಇನ್ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಸೂಚಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿನಥ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಶಾಂತಾ ಭಜಂತಿ ಯನಸೂಯವ. ಶಬ್ದಕ ಅರ್ಥ ದೇಖಿ ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಮೋಕ್ಷ ಕೇತೆ ಹೇ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೊ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಹೇ ನಾ ಉಸ್ಸೆ ಮುಕ್ತಿ. ಔರ್ ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಜೋ ಇಸ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಕೇ ಚಕ್ಕರ್ ಸೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಜಿನ್ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಉನ್ಕೊ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಯಾನಿ ಮೋಕ್ಷಕಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಘೋರ ರೂಪಾನ್, ಘೋರ ಮತಲಬ್ ಭಯಾನಕ್, ರೂಪಾನ್ ಮತಲಬ್ ರೂಪೋ ಕೋ, ಕಿಸ್ಕೆ ಘೋರ ರೂಪೋ ಕೋ, ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೇ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ದೇವತಾ ಹೋತೆ ನಾ ಉನ್ಕೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ರೂಪ ಹೋತೆ ಹೇ, ಕುಚ್ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಹೋತೆ ಹೇ ಉನ್ಮೇ ಸೆ ಜೈಸೆ ಕಾಲಿ ಕಾ, ಚಂಡಿ ಕಾ ಔರ್ ಕಾಲ್ ಭೈರವ್ ಇಸ್ ತರಹ ಕೆ ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ರೂಪ ಹೋತೆ ಹೇ ಉನ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಹಿತ್ವಾ. ಹಿತ್ವಾ ಮತಲಬ್ ಉನ್ಕೋ ತ್ಯಾಗ್ತೆ ಹೇ, ತ್ಯಾಗ್ತೆ ಮತಲಬ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಹೀ ಕರ್ತೆ ಪರ್ ಉನ್ಕಿ ಭಕ್ತಿ ನಹೀ ಕರ್ತೆ, ಉನ್ಕಿ ಪೂಜಾ ನಹೀ ಕರ್ತೆ. ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಪತಿ ನಥ, ಭೂತಪತಿ ಮತಲಬ್ ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ದೇವತಾ ಗಣ ಹೇ, ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ಅಭಿ ಪತಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ದೇವತಾ ಜೊ ಹೇ ವೋ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ವಸ್ತುವೆ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ತೆ ನಾ, ಜೈಸೆ ಜಲ್, ವಾಯು, ಅನ್ನ, ವರ್ಷ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಈ ಸಬ್ ದೇವತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಹಮೇ ಸಬ್ ಈ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ತೋ ಇನ್ಕೋ ಭೂತಪತಿ ಭಿ ಬೋಲಾ ಜಾತಾ ಹೇ ದೇವತಾಓ ಕೋ. ತೋ ಜೋ ಮುಮುಕ್ಷ ಹೋತೆ ಹೇ ವೋ ಹಿತ್ವಾ ಯಾನಿ ತ್ಯಾಗ ದೇತೆ ಹೇ ಕಿಸ್ಕೋ, ಭೂತಪತಿ ಯಾನಿ ದೇವತಾಓ ಕೋ, ಜೋ ದೇವತಾಓ ಕೆ ಸುಂದರ ರೂಪ ಹೇ ಜೈಸೆ ಇಂದ್ರ, ವರುಣ್, ಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ, ಔರ್ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಯಾನಿ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಹೇ ಜೈಸೆ ಕಾಲಿಕಾ, ಚಂಡಿಕಾ ಔರ್ ಕಾಲ್ ಭೈರವ್, ಶಮಶಾನ್ ಭೈರವ್, ಶನಿ, ಮಹಾಕಾಲಿ, ಯೇ ಸಬ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹಿತ್ವಾ, ವೋ ಹಿತ್ ಉನ್ಕೋ ತ್ಯಾಗ ದೇತೆ. क्यों त्याग देते? क्योंकि उसको क्या चाहिए? मोक्ष, वो उनको मोक्ष चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप जब है ना सुपर स्टोर में जाते हो, किसी भी मतलब किसी भी मार्केट में जाते हो, आपको जो चीज चाहिए होगी वही दुकान पे जाओगे ना। जो चीज आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉपिंग करते हो ना, जिस इस दुकान पे मैं मुझे मेरी पसंद की चीज मिलेगी। तो क्योंकि देवतागण उनको मुक्ति नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी देवता हो, भूतपति ना था या घोर रूपान, उनको मुक्ति नहीं दे सकते, तो फिर वो उनकी ओर नहीं जाते। फिर किधर जाते हैं? आगे बताया, नारायण कला शांति। नारायण का मतलब होता है, इस अथ भी लिखा हुआ ना, भूतपति नथ अथ मना, इस कारण से। किस कारण से? वो क्योंकि वो मुक्ति चाहते हैं, तो उस कारण से उसको वो किधर जाते हैं? नारायण कला शांति। नारायण मतलब भगवान के, कला मतलब स्वांश, भगवान के जो स्वांश है। अब भगवान भगवान श्री कृष्ण के स्वांश क्या है? विष्णु, और विष्णु के बहुत सारे अन्य विभिन्न रूप, जैसे भगवान के दूसरे जैसे अलग अलग अवतार हैं, नरसिंह, वामन, वराह, मत्स्य, कश्यप, ये सब अलग अलग जो भगवान के स्वांश हैं। कला मतलब स्वांश, और शांता यानी परम आनंदमय। अब क्योंकि उनकी शरण में जाते हैं तो ये बहुत आनंदमय है, और उन्हें जो उन भजंती का मतलब पूजा करते हैं, वो इतने आनंद है उनकी भक्ति में। तो जो भक्ति कर रहे होते हैं तो उनको भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। और अनसूयवा, लेकिन ही मतलब निश्चय ही अनसूयवा। और वो जो मोक्षकामी होते हैं, उनके अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो अनसूयवा यानी द्वेष रहित होते हैं। अब अनसूयवा का क्या मतलब होता है? ये दूसरे जो देवी देवता है उनके साथ द्वेष नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, वो हितवा का मतलब ये नहीं है, लेकिन वो उनकी भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें खबर है कि इन देवताओं की भक्ति करने से जो मुझे प्राप्त होगा वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मुझे चाहिए ही नहीं। तो फिर उनकी भक्ति करते नहीं है वो, बल्कि किधर जाते हैं? नारायण कला शांत। अब और दूसरा है ना सूयवा का क्या मतलब होता है? कि जीव क्या चाहता है इस संसार में? जीव के आने का कारण क्या है? कि वो प्रभुत्व जताना चाहता है। वो चाहता है कि जो आनंद कृष्ण प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद मैं भी प्राप्त करूं, मैं भोक्ता बनना चाहता हूं, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसा, कि जितने भी यज्ञ हैं, तपस्या हैं, तो उनका भोगने वाला मैं हूँ। तो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो क्या सोचते हैं? कि नहीं, हम कृष्ण क्यों भोक्ता बने, हम भी भोक्ता बने। तो वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और वो अपनी इंद्र तृप्ति की सामग्री को अर्जित करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो लिखा हुआ अनसूयवा, उनको ये सब चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो प्रभुत्व जताना नहीं चाहते। वो इस स्टेज पर आ गए हैं, ब्राह्मणिकल स्टेज पर, जहाँ पर उनको यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि क्योंकि भगवान ही, भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, वही पूजनीय है, वही पूजा के योग्य है। भगवान नारायण कला शांति यानी भगवान के जितने भी रूप अवतार हैं वही पूजनीय है, भजंती ही है ना सूर्यवा। इसलिए वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते कि नहीं भगवान का भोक्ता, वो दास भाव से। बाकी जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनका दास भाव नहीं होता है। वो देवताओं की पूजा करके भी क्या करना चाहते हैं? अपना इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व जताने की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन भगवान की शरण में आने का पहला आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए? कि आपके अंदर दास भाव हो, यानी ब्राह्मणिकल स्टेज पर आप आओ। तो फिर ज्ञान, जैसे ब्राह्मण के अंदर क्या होता है? ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान क्या है? कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो वो इस संसार का कोई भी वास्तविक कोई भी शय उसको चाहिए नहीं होती है इस संसार की, क्योंकि उसे पता है कि मैं आत्मा हूँ, तो इस संसार की कोई भी इंद्र तृप्ति की वस्तु प्राप्त करके मुझे कुछ, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं होगा, आत्मा को ये सब तो चाहिए ही नहीं। आत्मा को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूप व्यवस्थिता, क्योंकि वो मुक्ति चाहता है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाऊं, मैं भगवान का दास हूं। लेकिन अच्छा यहाँ पर क्या है, मुक्ति को और भी अच्छे तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं 8.16 में कि मुक्ति का क्या मतलब है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः, कि भगवान कहते हैं मुक्ति का मतलब होता है तो मेरे पास आ जाओ और इस दुखालयम अशाश्वतम जगत में तुम्हें वापस बारंबार नहीं आना पड़े। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको और भी सुंदर तरीके से बताते हैं कि नहीं कृष्ण, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपके पास आ जाऊं और मैं वापस जन्म जन्म ना जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसूं। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कह देते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रही तो की त्वयै, मुझे ये भौतिक चीजें तो पहले से ही तिरस्कार कर दिया, जिनकी देवताओं जिनके लिए देवताओं की पूजा की जाती है जो हम अभी 27 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया, न धनम न जन्म न सौंदर्यम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवतात् भक्ति रही तो की त्वयै। वास्तव में मुक्ति क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि मुक्ति का मतलब क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। और आपका वास्तविक स्वरूप जीव का क्या है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, तो भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा करना। और मुक्ति का रियल मतलब होता है आप अपने रियल स्वरूप में आ जाओ। तो मुक्ति का मतलब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने साफ बताया कि ये भी नहीं है कि तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से फंसो, बस भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, वो फिर आपको किधर रखता है, मतलब ये सब अपॉर्चुनिटी भगवान की सेवा करने की, भगवान की भक्ति करने की, भगवान से प्रेम करने की, आपको किधर प्राप्त हो रही है, उस जगह का महत्व नहीं है, वो स्टेज का महत्व है कि आपको भगवान ने वह प्रेम का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया, तो वो चाहे अपने लोक में करते हैं या फिर ये भौतिक लोक में करते हैं, भौतिक जगत में। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहितुकी त्वया, कि आपकी मुझे अहितुकी भक्ति के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि मुमुक्षवो जो मुक्ति वास्तविक मुक्ति चाहते हैं, गौर रूपान हित्वा भूतपति न था, भूतपति यानी देवताओं के अन्य रूपों को और घोर रूपों को हित्वा यानी प्यार देते हैं, नारायण कला शांति भजति, वो नारायण के शांति आनंदमय रूपों का जो अवतार है उनका भजन करते हैं, या न सुयवा यानी कि ईर्षा भी नहीं रखते देवताओं से और न ही उनको भगवान से तो कोई ईर्षा होती नहीं है। अनुवाद देखिए, जो लोग मोक्ष के कामी हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशियों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। शरूपा जी बहुत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्री रघुपाद द्वारा। शिवपाद की जय हो। श्री रघुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु कोटि के आदि पुरुष हैं, यानी कि विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके आदि पुरुष क्या हैं, वो सब अवतार किससे आए हैं, भगवान श्री कृष्ण से आए हैं, जो दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण दो भिन्न कोटियों में, एक तो पूर्ण या समग्र अंश या भिन्न अंश, पूर्ण अंश क्या है जो भगवान के अवतार है, विष्णु तत्व अवतार, और बिना अंश क्या है, हम सब जीव बिना अंश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्ण अंश सेव्य तथा पूज्य है। वास्तव में पूज्य यदि कोई है तो भगवान के विष्णु तत्व के जो अवतार है वही पूज्य है, और बाकी सब हम जो जीव हैं वो सेवक हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं। अब जीव जितने भी हैं, यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा नहीं है कि जो देवता हैं उनके अंदर भी विष्णु तत्व है, नहीं, वो सब भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की है कि वो जैसे कुछ कुछ शक्तियां कि भाई जल बरसाने की शक्ति जो है वो इंद्रदेव को केवी, वायु का ना देवता वरुण देव को, सॉरी वायु देवता पवन देवता को बना दिया, और सूर्य को प्रकाश का देवता बना दिया। तो भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान की है, क्यों की है, क्योंकि जो उनके कर्मों के अनुसार जैसे जैसे भी उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो आपको इंद्र की पदवी मिलती है, और इसी तरह से उन्होंने इस कामना से भगवान की भक्ति की है। अब भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली मोक्ष मिलेगा, भगवान की भक्ति का मतलब पता क्या है, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कि अकामा, किसी को कोई कामना नहीं हो, कोई भी इच्छा नहीं हो, मुक्ति की भी इच्छा नहीं हो, जैसे अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृत, न उसे ज्ञान चाहिए, न कर्म चाहिए, न जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, तो वो, और सर्व कामों वा का क्या मतलब होता है, वो अभी हम जो 27 श्लोक पढ़ेंगे ना उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर्व कामों यानी कि सारी कामनाएं उसके अंदर हो, सारी कामनाएं, उसे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, संतान चाहिए, हर चीज उसको, जो कुछ ज्ञान वगैरह की हर चीज चाहिए, सर्व कामों वा, और उसके अलावा मोक्ष कामो दारदि, यदि उसको केवल मोक्ष की कामना हो। अब ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अकामा का मतलब होता है उसके अंदर मोक्ष की भी इच्छा ना हो। सर्व कामों का मतलब होता है सब कुछ चाहिए उसको, जो कुछ देने योग्य या प्राप्त करने योग्य है वो सब चाहिए, और जिसे खाली कुछ नहीं चाहिए, खाली मोक्ष चाहिए, मोक्ष काम उदार, वो क्या करे, तीव्रेण भक्ति योगे ना, उसको बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति में स्थित होना चाहिए। जयजेत पुरुष परम, जो परम पुरुष है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति करनी चाहिए तीव्रता के साथ। तो जो देवता है वो इस बात को जानते, क्योंकि वो ब्राह्मणिकत स्टेज पर होते हैं और सत्वगुण में रहकर वो चाहते हैं भोग करना। सत्वगुण में रहकर भी यदि आप भगवान की भक्ति करते हो तो आप भोग की इच्छा के लिए भगवान के पास जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास जाने का केवल एक ही कारण है कि आपको मुक्ति मिलेगी या फिर आपकी इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी या फिर आपको सिर्फ सेवा ही करनी पड़ेगी। यदि आपको भोग की कामना है, भगवान कहते हैं भगवद्गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 16 में, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति नोचन आटो जिज्ञासु रहता थी ज्ञानी च भरतर्षभ। के चार प्रकार की पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं, आटो जिज्ञासु अर्थात ही तथा ज्ञानी। अब आर्त होंगे जो दुखी होंगे, वो भी अगर ब्राह्मणिकल स्टेज पर हैं, यानी उन सत्वगुण में हैं, तो उनको ये, उनके अंदर ये ज्ञान होगा ना कि मैं भगवान की शरण में जाऊं, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की भक्ति करना मेरा कर्तव्य है, अब इस संसार में आ गया हूँ, मुझे दुख मिल रहा है, तो इस दुख का निवारण करने के लिए मैं किधर, और भिखारी हूँ क्या, मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, मैं भगवान, मेरा अपना बाप समर्थ है, मैं अपने बाप के पास ही जाऊंगा ना, अगर भले कितने ही दूसरे देने वाले हों, लेकिन अगर आपके पास अक्कल है कि मुझे किसी
कोई मेरी समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए आप किधर जाओगे? अपने पिताजी के पास जाओगे। तो भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो यदि आपको अपनी कोई समस्या का समाधान करने के लिए जाना, आर्त हो, दुखी हो, तो दुख का निवारण करने के लिए भी भगवान की शरण में जाओ। जिज्ञासु आतो जिज्ञासु, अगर आपको इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो फिर कोई जरूरत नहीं है किसी और के आगे हाथ फैलाने की। भगवान समर्थ हैं, भगवान के पास समस्त ज्ञान है, तो आप भगवान के पास जिज्ञासु जा सकते हैं। अर्थात ही अगर आपको इस संसार में धन की कमी है तो उसके लिए भी किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है भिखारियों की तरह। भगवान बोलते हैं सुकृतिनो, जिसके पास सुकृति है, जिसके पास थोड़ा सा भी अनासक्तो गुण है, तो वो हर चीज को प्राप्त करने के लिए मेरे पास ही आते हैं। तो देवतागण जो है वो भगवान की पूजा करते हैं पहले जन्म में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, तो क्योंकि भगवान की पूजा करने के बाद उनको देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बताया कि भगवान की शक्ति प्रदत्त सारे देवता भिन्नांश हैं, लेकिन वो वास्तव में ये नहीं है कि वो विष्णु तत्व हैं, वो सब भिन्नांश हैं। जिस तरह जीव भिन्नांश है तो वो भक्ति करके इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देवता बन गए तो अब उनका स्टेज चेंज हो गया, स्तर चेंज नहीं हुआ। विष्णु तत्व होता है, जीव तत्व होता है। विष्णु तत्व वे जीव हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं, और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में अपनी भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते रहते हैं। अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में वो अलग अलग शक्तियों को प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन विष्णु तत्व वो होते हैं जो भगवान के आदि रूपों के ही समान होते हैं, यानी कि उनके अंदर उतना ही पावर होता है जितना कि भगवान के अंदर होता है विष्णु तत्व, वो होते हैं। और विष्णु तत्व के अंदर वो समस्त शक्तियां होती हैं जो भगवान के अंदर होती हैं, लेकिन आगे भिन्नांश के विषय में बता रहे हैं। जो जीव तत्व है, भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्तियां नहीं होती हैं। अतः विष्णु तत्व तत्वों या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि जो भगवान नारायण के पूर्ण अंश हैं, जो विष्णु तत्व हैं, उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भले देवताओं की भक्ति करें या भले विष्णु तत्व की भक्ति करें तो वो एक ही स्तर पर है। तो यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं इनकी गणना कभी भी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हम श्लोक को देखते हैं कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ। तो जितने भी भूतपतिनथ हैं, यानी जितने भी देवतागण हैं, उन सबको हित्वा, उन सबका त्याग कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका सम्मान नहीं करते, द्वेष नहीं करते उनसे, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि वो मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो भिन्नांश जीव ही हैं, लेकिन उनको यह भगवान की ओर से यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो देवता बन गए हैं। शक्ति प्रदत्त सारे देवता हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है। वास्तव में पूज्य तो केवल भगवान ही है, भक्ति तो केवल भगवान की करनी चाहिए। तो यहाँ पर भक्ति किसी भी, यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी होने का अपराध करता है। मतलब वो पाखंडी है जो ये करता है कि ठीक है आप भले इस देवता की पूजा कर लो, भले इस देवता की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो, तो एक ही रूप से, एक ही बात है, एटलीस्ट पूजा तो कर रहे हो। नहीं, आप जिसकी भी भक्ति कर रहे हो उसका स्तर देखना है आपको कि क्या वो वाकई में भक्ति उसकी करनी चाहिए। अब देखो देवताओं में सबसे उत्तम देवता अगर देखा जाए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को निकाल दें और देवताओं के राजा है इंद्र, इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं है उसकी पूजा करने की। साफ साफ भगवान ने मना किया कि आपको कोई जरूरत नहीं इंद्र की पूजा करने की। उन्होंने कहा कि हम तो कब से करते आ रहे हैं, ये तो हमने ना हमारे पूर्वजों ने कब से किया। अभी आज भी हम अगर कोई किसी को बोलते ना कि देखो आप इसकी भक्ति नहीं करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान ने उन्हें यही बोला कि मेरी भक्ति करो, यानी कि गोवर्धन की पूजा, यानी कि गोवर्धन साक्षात भगवान का स्वरूप है, तो बोला गोवर्धन की पूजा करो। क्योंकि अगर वो कहते कृष्ण की पूजा करो तो क्योंकि ब्रजवासी तो कृष्ण को क्या समझते अपना बच्चा, तो उन्होंने अपना ही स्वरूप दिया कि तुम गोवर्धन। आज भी जो सन्यासी हैं वो गोवर्धन शिला की पूजा करते हैं। तो भगवान ने साफ साफ मना किया है कि आपको देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देवताओं में देवेंद्र हैं, जो देवताओं के राजा हैं, उनकी पूजा करने से अपने माँ बाप को मना कर दिया भगवान ने। लेकिन आज का मूर्ख इंसान ये समझ नहीं पाता, फिर भी देवताओं की पूजा करना पसंद करते हैं। अभी हम अगले में पढ़ेंगे कि वो कौन होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये बताया कि जो ये सोचता है कि बिना अंश और भगवान के अंश स्वांश दोनों एक ही स्तर पर हैं, वो पाखंडी हैं। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान मानते हैं। कलयुग में तो सब ऐसा ही कर रहे हैं, सब तकरीबन सब लोग बोलते हैं कि किसी की भी भक्ति करते, मतलब आप जिसकी भी भक्ति करते हो एक ही स्तर पर कैसे हो सकता है। भगवान ने साफ साफ कह दिया भगवद गीता में 9.25 में, यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेश्च यान्ति मर्त्याचिनोऽपि मम, कि आप देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे, और भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, और मेरे पास आना है तो मेरी पूजा करनी पड़ेगी ना। तो अगर एक ही स्तर है तो वो बेवकूफ ये कैसे सोच सकता है कि देवताओं की पूजा करके भी मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। देवताओं के पास जाओगे और फिर क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और इसी बात को समझाना पड़ेगा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि ये भिन्नांश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। यथा अब भिन्नांश जो ये घोर रूपान लिखा हुआ है ना, उनके विषय में बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि उनकी भौतिक शक्तियों के अनुसार अलग अलग उनको पद दे दिया है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग उनको शक्तियां किसको, यथा काल भैरव शमशान भैरव शनि महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं क्योंकि मुमुक्षुओं को किस अवस्था में होते हैं, सत्वगुण में होते हैं, और सत्वगुण में रहकर वो शुद्ध सत्व में होते तो वो सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं। अब रजोगुण के देव लोग जो होते हैं उनको क्योंकि भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए वो किसकी, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे धन अर्जन करने के लिए लक्ष्मी की सरस्वती की और इस तरह। लेकिन जो तमोगुण में होते हैं, जो केवल हानिकारक कार्य करते हैं और अज्ञानी होते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे देवताओं की पूजा सिर्फ तमोगुणी यानी निम्न अवस्था के लोग ही करते हैं। और आगे बताएं, ब्रह्मा शिव सूर्य गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजित हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। अब क्योंकि उनको भौतिक चीजें चाहिए होती है तो वो ऐसी चीज ऐसे देवताओं के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं और शिव की पत्नी उमा देवी के पास जाते हैं। सब लड़कियां बोलते मुझे सुंदर पति चाहिए, सरस्वती के पास जाते हैं कि हमें विद्या चाहिए, और गणेश के पास जाते हैं कि रिद्धि सिद्धि और रिद्धि सिद्धि बुद्धि ये सब प्रदान करो। तो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि रजोगुणी होते हैं, उनको भौतिक भोग की आशा होती है। किंतु जो सचमुच सत्वगुणी होते हैं वो केवल विष्णु तत्व को पूजते हैं। सिर्फ सत्वगुण में ब्रह्मणिकल स्टेज में जब आप भगवान सत्वगुण में आप जब आ जाते हो तो फिर आप भगवान के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करते हो। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं। अब यहाँ पर विष्णु तत्व के विषय में बता रहे श्री प्रभुपाद जी, नारायण दामोदर वामन गोविंद तथा अधोक्षज। आप किसी भी नाम से भगवान को पुकार सकते हो, किसी भी रूप का चयन कर सकते हो और भगवान की पूजा कर सकते हो। योग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर जो योग्य ब्राह्मण है वो शालिग्राम शिला को पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को पता होता है कि भगवान की पूजा कर शालिग्राम शिला में ही वो भगवान को देखते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य क्या करते हैं, क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे द्विज भी सामान्य रूप से विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं, फिर वो अलग अलग जैसे कोई भी रूप को चयन करते हैं उसको पूजा करते हैं। सत्वगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। अब जो वो कभी भी ये नहीं कहते कि इनकी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करते हैं, अपमान नहीं करते, वो देवताओं का भी बहुत आदर करते हैं। अभी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं, यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत ही भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक रूप उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त हुए हैं। अब भगवान ने अपने सेवकों को अलग अलग रूप प्रदान किए हैं, वो सब भगवान के सेवक हैं, भले वो कितने भयानक रूप में हो लेकिन वो उनका भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि इन्होंने साफ साफ बताया ना, देखो शुरू में मुमुक्ष वो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था, वो सारे रूप जितने घोर रूप हैं और जितने दूसरे सुंदर रूप हैं उन सब का त्याग कर देते हैं और क्या करते हैं, नारायण कला शांता भजंती यनसूय, वो नारायण की भक्ति करते हैं लेकिन किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते, दोनों रूपों को त्याग कर केवल विष्णु भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि वे भौतिक जगत के मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं, मुमुक्ष वो होते हैं ना वो, तो उनको पता है कि क्योंकि सारे देवता एक साथ मिलकर यदि हम उनकी पूजा करें, सब देवताओं को प्रसन्न करें और सिर्फ एक इच्छा करें कि हमें मुक्ति प्रदान करो, तो सारे देवता अपनी शक्तियों को एकत्रित करके भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो क्योंकि उनको पता होता है कि हमें मुक्ति चाहिए तो देवता तो देंगे ही नहीं, तो फिर वो देवताओं के पास नहीं जाते हैं। आगे श्री रूपा जी कहते हैं सारे देवता यहाँ तक के देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। ब्रह्मा जी की पूजा किसने की थी, हिरण्यकश्यपु ने, कितने साल तक, 36,500 साल तक, और कहा मुझे मोक्ष चाहिए, परंतु ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मुक्ति तो मैं दे नहीं सकता। तो यहाँ पर उसी का उदाहरण श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी किंतु उसका पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सका, इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाथ या मुक्ति का प्रदाता भगवान नहीं कहलाता। आपको देखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। आपको यदि भौतिक भोग ने बसना है तो आप देवताओं की पूजा करो, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा, दुख दोषानुदर्शनम, बारंबार इस दुखमय कुंठा जगत में आना पड़ेगा और भले देवता आपको आपकी इच्छा के अनुसार वरदान दे देंगे और दूसरे जन्म में आपको अमीर भी बना देंगे, तो क्या अमीरों के पास दुख नहीं होते। चलो आज आपकी बहुत बहुत इच्छा है ज्ञान प्रदान प्राप्त करने की, तो आप किसी देवता की भक्ति करते हो ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो क्या ज्ञानियों को दुख नहीं होता। चलो कि आप है ना किसी देवता की भक्ति करते हो कि मुझे अच्छा पति प्रदान करो, तो जिसका पति अच्छा होता है क्या उसको दुख नहीं होता। ये संसार दुखालयम है, जब तक आप दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते, जब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, तो अगर आप वाकई में कोई जीव अक्लमंद है तो वो क्या करेगा, देवताओं की पूजा क्यों करेगा। पूजा करने का रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आपके समस्त दुखों का निवारण हो जाए। अब एक दुख निवारण हो गया, समझो लक्ष्मी प्राप्त हो गई, धन प्राप्त हो गया, लेकिन जिनके पास धन है उनसे जाकर पूछो कि आप सुखी हो, सुखी हो नहीं सकता जीव जब तक कि इस संसार में जन्म मरण की मृत्यु में कैद है, जन मरण के चक्कर में जब तक कैद है, जंजीरों से बना हुआ बंदी गृह में कोई व्यक्ति कभी सुखी हो नहीं सकता। सुखी होने के लिए मुक्ति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कहते हैं, विष्णु के अतिरिक्त अन्य मुक्तिपाद या मुक्ति का प्रदाता भगवान नहीं कहलाता, कोई भी नहीं हो सकता। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस संसार के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब देवता बेचारे स्वयं भी सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो अपने अनुयायियों को, वो अपने भक्तों को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते हैं, तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह से मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वाले को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं प्रदान कर सकते। क्षणिक लाभ यानी थोड़े टाइम के लिए उनको सुंदरता प्रदान कर देते हैं, ज्ञान प्रदान कर देते हैं, अच्छा धन प्रदान कर देते हैं, लेकिन वो उनको परम लाभ नहीं दे सकते। क्योंकि परम लाभ क्या है कि आपको कभी कोई कष्ट आए नहीं, तो देवताओं के हाथ में नहीं है। आगे कहते श्री प्रभुपाद जी, यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करके यद्यपि वे उनके प्रति असम्मान नहीं दिखाते। यहाँ पर लिखा हुआ है यह न सुनो, मुमुक्ष घोर रूपाण हित्वा भूतपति न था, वो घोर रूपान को छोड़ देते हैं, भयानक रूपों को और दूसरे आकर्षण रूपों का भी त्याग कर देते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन किसी का भी अनादर या असम्मान नहीं करते। तो आज हमें ये पता चला कि जो मुमुक्ष है वो किसकी भक्ति करते हैं? केवल भगवान नारायण के स्वांशों, जो रियल अंश है, उनके अवतार है या उनकी। और कल मेरी इच्छा थी सप्ताह हम भी पढ़ेंगे, लेकिन समय ज्यादा नहीं लेना चाहती हूँ ताकि आप सब श्रवण करो। तो 27 में भगवान क्या गोस्वामी बताएंगे कि जो भौतिक लाभ चाहते हैं वो क्या करते हैं, और जो इस सारे अब तक हम पढ़ रहे हैं उसका सार 28 श्लोक नंबर 28 एंड 29 में सार बताएंगे। तो कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना कीजिएगा कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण को अच्छे तरीके से समझ सके और पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।